Say this in English.
What do you say?
Maharaj, you ask how many of you don't understand English. So how they will understand this?
Very smart. Okay, so I'll correct myself. Kaun angrezi nahi samajhte? Aur kaun kaun hindi samajhte? Hare Krishna. तब तो हिंदी में ही बोलना होगा. हरे कृष्णा. हिंदी में ही बोलना चाहिए था ऐसे. हम हिंदुस्तानी. सो ये हमारी मातृभाषा है. लेकिन भारत में इतने सारे भाषाएं हैं कि कोई एक भाषा, यद्यपि हिंदी मातृभाषा है, फिर भी हर जगह में हिंदी का उपयोग नहीं होता, विशेष रूप से दक्षिण भारत में. उत्तर भारत में तो ठीक है, क्योंकि बॉलीवुड के प्रभाव से हिंदी सबको ही मातृभाषा बन गया है. ठीक है. यहाँ आप कौन कौन इस्कॉन के साथ जोड़े हैं? इस्कॉन में इस्कॉन के साथ जोड़ने से जोड़ने का प्रयोजन क्या था, जरूरत क्या था इस्कॉन के साथ जोड़ने का? याद नहीं कि तो इस्कॉन के साथ जोड़ने से फायदा क्या हुआ? कुछ फायदा हुआ है? कौन कौन सोचते हैं कि फायदा हुआ है? क्या फायदा हुआ है? कौन बताए?
हैप्पीनेस की डेफिनेशन ही बदल गई. हैप्पीनेस की, खुशी की जो
डेफिनेशन है,
पहले डिफरेंट थी.
अच्छा, पहले हैप्पीनेस कैसी थी?
सेल्फ
ग्रेटिफिकेशन. अब कैसे है हैप्पीनेस?
अच्छा.
तो ठीक है, हम देखिए अंग्रेजी का प्रभाव कैसा है. हिंदी बोलते हुए भी शब्द का प्रयोग हुआ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस का हिंदी शब्द क्या है? प्रसन्नता. नहीं, आनंद सही रूप से नहीं, सुख. सुख और दुख. हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस. प्रसन्नता का अंग्रेजी शब्द होगा सेटिस्फैक्शन. प्रसन्न. सुख दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, सुख और आनंद. सुख और आनंद में अंतर क्या है? ये दो शब्द में अंतर किसको पता है? ओके.
सुख इज टेम्पररी नेचर और आनंद.
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा हिंदी बात हो रहा है.
मतलब सुख बहुत थोड़ी देर को आता है, फिर खत्म हो जाता है.
वेरी गुड, वेरी गुड. सुख क्षण भर के लिए, अर्थात सुख का संज्ञा अर्थात मीनिंग सही रूप से क्या है? शास्त्र में सुख का वर्णन हुआ है क्षण भर के लिए जब दुख का निवृत्ति होता है वो है सुख। असल में ये भौतिक जगत दुखालयम, ये भौतिक जगत दुख से भरा हुआ है, दुख प्राप्ति के लिए है इस जगत, है ना। भगवद गीता में भगवान ऐसे बता रहे हैं ये भौतिक जगत का स्थिति कैसी है, दुखालय दुखालय। और कोई अगर सुख में हो उनके बारे में भगवान कह रहे हैं अश्वाशतम। अश्वाशतम का अर्थ क्या है? टेम्पररी, क्षण भर के लिए। तो हम ये सुख का सही अर्थ या सही जानकारी हम ऐसे कर सकते हैं, ये जगह दुख से भरा हुआ है और दुख का जब निवृत्ति होता है, जब दुख कुछ समय के लिए हम हटा देते हैं तो उसको हम सुख कहते हैं। इसका एक दृष्टांत हम ऐसे दे सकते हैं, एक जगह जो अंधेरा से भरा हुआ है, अंधेरा है बिल्कुल अंधेरा, वहां हम दिया जलाकर वो अंधेरा हटा सकते हैं क्षण भर के लिए, कुछ समय के लिए। जब तक दिया जलता रहेगा तब तक ही अंधेरा हट जाएगा, लेकिन जब दिया जब बुझ जाएगी फिर से अंधेरा आ जाएगा। तो वैसे ही इस भौतिक जगत, सोचो ये अंधेरा, ये सोचो अंधेरा है दुख, और अंधेरा को जो हटाने का बंदोबस्त होता है वो है सुख, जैसे दिया जला के या लाइट जला के। बल्कि ये लाइट जब नहीं रहेगा तब अंधेरा छा जाएगा। तो सुख का वर्णन समझ गए हैं आप लोग? अच्छा, लेकिन घर के बाहर जो अंधेरा जो जगह है उसके बाहर सूरज का किरण है। तो हम जब घर से निकल जाते हैं तब दिया का जरूरत होता है नहीं, क्योंकि वो जगह रोशनी से भरा हुआ है। तो ये जो दुख की जो विपरीत स्थिति है वो है आनंद। दुख अगर अंधेरा है तो रोशनी है आनंद। जब हम सूरज के किरण में आ जाते हैं दिन के वक्त, तब वहां अंधेरा रहता है? तो ऐसे ये भौतिक जगत जो है ये है दुखालयम, और इसलिए इस दुख को निवृत्ति के लिए जो हमारा आयोजन होता है वो है। और असल में बात ये है कि ये जगह तो कष्ट पाने के लिए है दुखालयम, और ये शरीर, इसके बारे में हम कभी सोचे हैं ये शरीर का स्थिति कैसी है? अमित ने बताया था कि सेंस ग्रेटिफिकेशन। हरे कृष्ण, हाउ आर यू? आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। कि इंद्रिया सुख भोग, इंद्रिय का तृप्ति साधन करके, तो ये इंद्रिया है शरीर के, शरीर में चेतना का अनुभूति। ये शरीर के द्वारा जब हम आनंद प्राप्ति के प्रयास करते हैं वो हैं, जब वो सफल होता है तो हम बोलते हैं सुख है। लेकिन ये शरीर का असल स्थिति कैसी है? हमारे एक दर्शन है, छह दर्शन में से एक दर्शन है न्याय। न्याय के द्वारा विचार किया जाता है ये शरीर का स्थिति कैसी है, और उसका अंतिम सिद्धांत है कि ये शरीर कष्ट प्राप्ति के एक यंत्र है। यानी हम शरीर के कोई भी अंग हम ले सकते हैं, जैसे ये अंगली, किस किस रूप से हम इस शरीर इस अंगली को कष्ट दे सकते हैं, एक चक्कू से काट सकते हैं, आग से जला सकते हैं, पत्थर से, कितनी ढंग से कितनी रूप से हम इसको ये अंगली को कष्ट दे सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि इस अंगली को किस रूप से हम मजा देख सकते हैं, सुख देख सकते हैं, प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट। ये जो विचार है ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंग में हम प्रयोग कर सकते हैं। टेक एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड यू गेट द सेम कंक्लूजन। इन सो मेनी डिफरेंट वेज वी कैन गिव पेन टू दैट पार्ट ऑफ द बॉडी, but there is no way we can give pleasure to this body. So the conclusion is, to vichar hai ki ye sharir kasht prapti ke ek jantra hai. Lekin hamara ek, we have a faculty jo hai buddhi, intelligence. Hum buddhi ke dwara wo kasht prapti ko jo sthiti hai usko रिमूव करने का कोशिश करते हैं। विद इंटेलिजेंस वी ट्राई टू रिमूव द सफरिंग कंडीशन, इजंट इट? बट इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर एफर्ट्स वी डोंट रियली सक्सीड। ऑल्दो वी मेक सो मेनी अरेंजमेंट्स, यू कैन सी ऑल दोज अरेंजमेंट्स टू रिमूव द सफरिंग कंडीशन हैज बीन अप्लाइड बाय intelligence. With our intelligence we have. Like say for example, it's very cold. We make arrangement for air conditioning. I'm sorry, heating, central heating. How the central heating arrangement has been made? With intelligence. It's very hot. Air conditioning. It's difficult to get water tap, right? At night we need light, electric supply. And on an individual level we can see, if I put my hand in fire it will get burnt. So intelligence, so don't put your hand in the fire. The car is coming and you're crossing the road. Says don't cross the road, the car. Who is doing that? Intelligence. So by Krishna's mercy we have one thing called intelligence. But the intelligence should be applied to remove the suffering condition forever. That is the ultimate intelligence. Therefore Krishna is telling in Bhagavad Gita, Dadami Buddhi Yogantam. How many of you remember that verse? Tesham Satata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogantam Yena Mam Upajantite. To Buddhi ka asal prayag kaise hona chahiye? बुद्धि योग में, मतलब जिस बुद्धि के द्वारा हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ सकते हैं वो है सही बुद्धि। सो बुद्धि का असल उपयोग क्यों है? दुख के निवृत्ति के लिए। और पूर्ण रूप से दुख का निवृत्ति कब होता है? जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं। संपर्क जोड़ने का तरीका कैसी है? सतत जुगता नाम भजताम, भजताम भजताम। भज का भज शब्द का अर्थ क्या है? सेवा। सेवा के द्वारा, प्रेममयी सेवा के द्वारा जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ते हैं तो दुख का पूर्ण निवृत्ति हो जाता है और हम भगवान के पास येना माम उपजानती। येना का मतलब क्या है? जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मेरे पास आ सकते हैं। तो इस भौतिक जगत अंधेरा है और भगवत धाम
उजाला,
उजाला है, या उजाला, ये शब्द का प्रयोग मैं याद रखूंगा। I was looking for a right word for that when I said opposite to darkness and I used the word रोशनी, बल्कि रोशनी से भी अच्छा शब्द प्रयोग है उजाला। अंधेरा उजाला। तो ये भौतिक जगत अंधेरा, आध्यात्मिक जगत भगवत धाम उजाला। कैसे? न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक। उस जगत को उजाला करने के लिए न तो सूरज का जरूरत होता है, चंद्रमा का जरूरत होता है, या आग का जरूरत होता है, पावक अग्नि। ये तीन के द्वारा इस भौतिक जगत में अंधेरा का निवारण होता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवत धाम में इसका जरूरत सूरज का, चंद्रमा का और आग के द्वारा रोशनी प्राप्ति के जरूरत नहीं होता है, क्योंकि वो जगत उजाला है, ज्योतिर्मय है। ये है भौतिक आध्यात्मिक जगत का वर्णन। न तद भाषयते सूर्य न शशांक न पावक और जद गत्वान निवर्तन्ते स्थान पर। वहां एक बार जाने से और यहां फिर वापस आने का जरूरत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो जगह हमारा असल निवास स्थल है, हमारे असल घर है। वहां वही जगह इज आवर रियल होम एंड वी ऑल केम फ्रॉम देयर। हम सब वहां से आए। ये भौतिक जगत हमारे रहने का सही स्थान नहीं है। जैसे इसलिए इसको और एक दृष्टांत और एक संज्ञा इस भौतिक जगत का है, ये जगह कारागार, कैद खाना, जेल। आगार। तो इस भौतिक जगत में कोई कारागार में रहना चाहते हैं? कारागार में क्यों लोग जाते हैं? दंड प्राप्ति के लिए। तो वैसे ही हम लोग यहां आए हैं दंड भोगने के लिए। हमें सजा क्यों मिल रहा है? क्यों हम भगवान से दूर चले गए हैं, रिजेक्ट कर दिए हैं, त्याग दिए हैं, भगवान को हम त्याग दिए हैं, इसलिए हमें सजा मिल रहा है। और ये सजा का उद्देश्य क्या है? ताकि भगवान को याद करके भगवान के साथ हमारा संपर्क जोड़कर वहां हम वापस जा सके। और ये सुजोग इस भौतिक जगत में केवल मनुष्य को ही मिलता है। भिन्न भिन्न प्रकृति के भिन्न भिन्न तरीका के जीव हैं, 84 लाख जीव हैं, उनमें से मनुष्य योनि केवल 4 लाख है। और उस 4 लाख मनुष्य शरीर में भी कुछ शरीर हैं असभ्य, अनसिविलाइज्ड, कुछ शरीर हैं अर्थसभ्य, जो भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, वो हैं असभ्य। असभ्य का मतलब ये नहीं है कि जो जंगल में रहते हैं या कपड़ा नहीं पहनते हैं, और सभ्य हैं जो बड़े बड़े मकान में शहर में रहते हैं। सभ्यता का असल निदर्शन वो नहीं। असल सभ्यता का वर्णन कैसे हो रहा है? जो भगवान को जानते हैं और भगवान के साथ संपर्क जोड़े हुए हैं, इसका वर्णन हो रहा है। असभ्य जो नहीं, ऐसे भगवान के साथ संपर्क नहीं जोड़ते हैं, भगवान के बारे में नहीं जानते हैं, वो है असभ्य। और अर्थ सभ्य जो व्यावहारिक रूप में, जो ऐसे आर्टिफिशियली वेद को मानते हैं लेकिन उसको सही रूप से अपनाते नहीं, मुंह से बोलते हैं मैं मानता हूं, वो है अर्थ सभ्य। और वेद की जो असल निर्देश, भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का जो निर्देश, वो जो मान लिया है वो है सभ्य। और सभ्य शब्द का और एक अर्थ है सभा में बैठने का योग्यता, जिसको है वो है सभ्य। कौन सी सभा? जैसे ऐसी सभा जहां भगवान के बारे में चर्चा होता है, भगवान की महिमा कीर्तन होता है, भगवान के उपदेश अपनाते हैं, वो है सभा। उस सभा में जो बैठने का योग्यता जिसको है वो है सभ्य। तो हम इस विचार से देखते हैं कितने सारे आदमी आज सभ्य हैं, यहाँ के पॉपुलेशन कितनी है?
25 लाख।
उस 25 लाख में से कितने आदमी भगवान के बारे में सोचते हैं, भगवान के साथ संपर्क जोड़ने का कोशिश करते हैं? बहुत ही कम। तो वैसे हम देखते हैं इस स्थिति आज कैसा है इस जगत का। और ठीक है, इसलिए ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को प्रचार करना बहुत ही जरूरी है। जो इस ज्ञान को प्राप्त हुए हैं उसको उत्तरदायी है इस ज्ञान को दूसरे को बांटने का। चैतन्य महाप्रभु ने क्या निर्देश दिए हैं? जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। जिसके साथ तुम्हारा मुलाकात होता है उनको भगवान के बारे में बताओ, कृष्ण के बारे में बताओ। कृष्ण जो उपदेश दिए हैं भगवत गीता में, उस उपदेश को बांटो। और श्रीमद् भागवत में भगवान को जो महिमा कीर्तन हुआ है, भगवान के लीलाएं का जो कीर्तन वर्णन हुआ है, उसको दूसरे को सुनाओ। तो ये है भगवान का कृष्ण उपदेश। और इसी का वो आज हो रहा है, इसलिए इसका प्रचार हो रहा है। देखिए इसका ऐसे प्रचलन कैसे हुआ, एक्सपेंशन कैसे हुआ। श्रील प्रभुपाद अकेला गए थे अमेरिका, लगभग 55 साल पहले अकेला अमेरिका में जाकर 50 साल के अंदर, उस समय प्रभुपाद अकेला थे, अमेरिका में न्यूयॉर्क में गए, प्रचार करना शुरू किया, दो चार अमेरिकन लड़का लड़की आई, और आज ये सारा दुनिया भर इस्कॉन का ये मतलब भगवत तत्व ज्ञान जो वेद में जिसका वर्णन हुआ है, और वेद का सार निचोड़ जो है भगवत गीता और श्रीमद् भागवत के द्वारा जो ज्ञान का प्रचलन हुआ है उसको सारा दुनिया में प्रकट माता है उनके ग्रंथ की माता। पांच साल पहले यहाँ आप तो कितने लोग थे, आज और पांच साल के बाद और कितने होंगे, कैसे होंगे, क्योंकि ये प्रचार के कारण प्रचार हो रहा है, भगवान की वाणी का प्रचार हो रहा है, और जो बुद्धिमान है विचारवान है वो अपनाते हैं, अपना रहे, ग्रहण कर रहे हैं। केवल ये दो ग्रंथ जो हैं भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम काफी है। कैसे वेद का जो वेद का ज्ञान दो स्ट्रीम दो धारा में बहती है, एक है उपनिषद और एक है पुराण। सारे उपनिषदों का जो सार निचोड़ है वो है भगवद गीता। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन वत्स पार्थ सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। सारे उपनिषद एक गाय जैसी है, सर्व उपनिषदों गावो, उस गाय को दोहन करने वाला कौन है, दुग्धा गोपाल नंदन श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने इस गाय रूपी उपनिषद को दोहन करके किए हैं, और गाय दूध क्यों देती है, अपने बछड़ा के लिए, वत्स पार्थ, उस कौन है इस गाय की बछड़ा, अर्जुन। और यद्यपि गाय बछड़ा के लिए दूध देती है लेकिन दूध कौन पीता है, मनुष्य नहीं पीते। तो ये जो गीतोपनिषद रूप जो दूध है उसको कौन पीते हैं, सुधीर भोक्ता। सुधी धी का मतलब है बुद्धि, विचार करने का क्षमता, धी सु जिनका धी या विचार करने का शक्ति सुंदर है, सुधी वो इस गीता के ज्ञान अपनाते हैं या गीता रूप दुग्धामृत पीते हैं। तो ये ऐसे हम देखते हैं भगवत गीता ही सारे उपनिषदों का सार निचोड़ है, और पुराण की धारा में जो है 18 पुराण है, उस पुराण में से महापुराण कौन से पुराण है, और भागवतम का वर्णन कैसे हुआ है, निगम कल्पतरुर बलितं फलम। निगम निगम है वेद, वेद एक कल्प वृक्ष जैसी है, निगम कल्पतरुर, इस वेद रूप कल्प वृक्ष का गलितं फलम, गलितं शब्द का अर्थ क्या है, बिल्कुल पक्का हुआ, राइपेंड फ्रूट, गलितं फलम। देखिए वेद है एक कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के पास हम जो कुछ मांगते हैं मिल जाता है, जो कुछ हम चाहते हैं और हम उसमें मिल जाता है। तो जिस वृक्ष के पास जाकर हम जो कुछ मांगते हैं हम मिल जाता है, तो उस वृक्ष का फल कैसी होगी? और वो फल कैसे? एकदम राइप एंड फ्रूट, पक्का हुआ फल। और तत्पश्चात सुख मुखाद अमृतम द्रव संयुतम। सुखदेव गोस्वामी के वो फल सुखदेव गोस्वामी के मुखामृत से युक्त हुआ है। सुख मुखाद अमृतम मुखामृतम द्रव संयुतम। और उसको कौन पीते हैं, उस फल को कौन आस्वादन करते हैं? पीवत भागवतम रसमालयम। सारे रसों का मतलब आनंद प्राप्ति के जितने सारे उपाय हैं, जो रस रस है आनंद प्राप्ति के माध्यम। और रसम आलम आलयम, आलयम का मतलब, आलयम का मतलब है सोर्स, सारे रसों का स्रोत। और मुहुरह रसिका, जो रस आस्वादन कैसे करना है जो जानते हैं, वो मुहु मुहु का मतलब हर समय हर वक्त। वो रसिक व्यक्ति जो है वो हर समय भगवत कहें श्रीमद् भागवतम रूप जो अमृत है उसको आस्वादन। तो ऐसे हम देखते हैं ये दो ग्रंथ ही सारे वेदों का सार निचोड़ है। उपनिषद का है भगवद गीता, पुराणों का है श्रीमद् भागवत। इसलिए प्रभुपाद में प्रभुपाद ने इस दो ग्रंथ के माध्यम से अपने ज्ञान प्रदान किए। प्रभुपाद ऐसे कुछ बनाया नहीं अपने मन से, प्रभुपाद जो दिए हैं सारे शास्त्र के माध्यम दिए हैं। केवल शास्त्र के माध्यम ही नहीं, हमारे परंपरा में हमारे आचार्यगण जो सिद्धांत दिए हैं उसके आधार पर श्रील प्रभुपाद ने इस ज्ञान को प्रदान किए हैं। और इसका फल भी हम देख रहे हैं। मुहुरह रसिका भूगु भाविका, सुधी भोक्ता, जो बुद्धिमान है जो विचारवान है वो लोग इसको अपना रहे हैं। मैं देखता हूं आजकल दुनिया भर सही ज्ञान के अन्वेषण बहुत हो रहा है। जैसे यूके में, इंग्लैंड में 56% लोग धर्म को नहीं मानते हैं, बोलते हैं कि मेरा कोई धर्म नहीं, वी डोंट हैव रिलीजन। 56% पीपल क्लेम दैट दे डोंट हैव रिलीजन, बट दे से दैट दे बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। This is, although apparently it seems to be a very shocking thing, shocking news, 56% don't have religion. But actually it's a good sign. Because what's going on in the name of religion today, they don't want to have anything to do with it. Today what's going on in the name of religion all over the world, any intelligent person will not identify himself. But they're looking for spirituality. Last summer, I had a program in London where it was in the house of a very important person. Maybe you all know Anil Agarwal. He's one of the richest Indians today. So he's quite close to us, and whenever I go to London, he arranges a program in his house. And naturally, he invited many nice people, well-established, intelligent, professionals. And after the lecture, when I asked, there was a question answer. One person asked a question. What is the difference between religion and spirituality? What's the difference between religion and spirituality? So my answer to that was, religion is the means to understand the spiritual reality. Religion ki madhyam hum spiritual nature ko jaan sakte hain aur spiritual nature ke bare mein hame marg dikhane ka tarika hai religion. What is going on in the name of religion is not religion. But if we look at the origin of all religions, then we can see all religions are speaking about spiritual reality. All religions are establishing that our identity being spiritual. All religions are accepting God. All religions are accepting that there is a reality beyond this material nature. So in that way you can see all religions are actually speaking about the same thing. But today, what is going on in the name of religion is very, very unfortunate. And that created a lot of interest, I could see. Like, my lecture was until 9 o'clock, and then was dinner. So the table I was sitting, one after another people were coming to speak to me, and it went on till 11 o'clock. You can see that people had natural interest. They want to know, and when they find that, they respond. And we have the real answer. That's one thing we can claim, that ISKCON has the real answer. I can say for myself, I was searching for a guru who would give me the knowledge. And after searching, mainly in North India, starting from the Himalayas and going to the Ganges, met many, many sadhus and spiritual leaders. But I was not, I couldn't accept what they were actually giving, or they were trying to give. I felt that that's not. But when I came across Srila Prabhupada's teachings, not even in contact with Srila Prabhupada, just one book, The Nectar of Devotion, the very first page, I felt that this is what I was looking for. Isn't that the fact with Prabhupada's books? Once you start reading, like, another person the other day I was talking to, he was telling that he was also searching, he was reading, but when he came across Srila Prabhupada's books, he felt that he found all the answers. He found the real knowledge. So that is the unique aspect of Srila Prabhupada's books. It appeals to the intelligent mind. Those who are really searching, they find that this is it. So for that matter, we must consider ourselves to be very fortunate that we came across Srila Prabhupada's teaching and we have accepted it. You know something? I often make a challenge when people come and try to present their philosophy. I said, fine, maybe you are accepting it. But show me if there is anything higher than what I got. I'll accept it. I'll give this up and go there. But in last 45 years, I haven't found it. On the other hand, my conviction in Prabhupada's teachings is becoming stronger and stronger. Because it's coming with newer and newer realizations, which is confirming my commitment to ISKCON. What Srila Prabhupada gave, or what our line, what Acharya gave, what Chaitanya Mahaprabhu gave, is the highest. It's the highest. Anyway, please become seriously involved, become, please commit yourself wholeheartedly, read Srila Prabhupada, and you'll see. And what is the ultimate consideration? What is the ultimate consideration? The ultimate consideration is, how are we going to leave our body? And how should we leave our body? Ante Narayana Smriti. At the time of death, we have to remember Krishna. And what we are doing is we are practicing so that at the time of death we can remember Krishna. All that we are doing, chanting 16 rounds, rendering devotional service, reading Prabhupada's books, associating with the devotees, all these have only one purpose, to prepare ourselves so that at the time of death we can remember Krishna. At the time of death, we'll be freed from the bondage of this body. The soul will be free. But at that time, if we have any material attachment, we have to come back again. But the consideration is, if at that time we can remember Krishna, see, we'll be free from the bondage of this body. It's a bondage. When you become free from this bondage of this body, then we have the opportunity to go back to the spiritual world. But for that we have to prepare ourselves. It don't just happen accidentally. We can't say, well, at the time of death I will remember Krishna. No, it don't happen like that. You have to prepare yourselves for that. And this is the preparation. Our last thought will be where our deepest attachment is. So this is how we are actually developing our attachment to Krishna. If Krishna is our deepest attachment, the last thought will be Krishna. We can't say that we'll think of Krishna at that time. Can you decide what you're going to dream tonight? You can't. Because at that time when you're asleep, your will not function. So that time it will go wherever the deepest attachment is. Thank you all very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Does anybody have any question or comment? Yes.
एक प्रश्न तो ये है कि चैंटिंग सिमरन करना अधिक महत्वपूर्ण है या पुस्तकें पढ़ना अधिक महत्वपूर्ण?
दोनों ही महत्वपूर्ण है. नवदा भक्ति में श्रवणम कीर्तनम स्मरणम. रीडिंग जो है वो स्मरणम, बल्कि सरल स्मरणम के पूरक श्रवणम और कीर्तनम होना चाहिए. श्रवण और कीर्तन के माध्यम हमें कृष्ण के बारे में जानकारी होता है. तब जब पुस्तक जो पढ़ते हैं तो उसको उपलब्धि होता है कि जो हम कृष्ण के बारे में जो हम सुन रहे हैं उसके द्वारा हमारे जो कृष्ण के प्रति हमारे जो आकर्षण है उसका पुष्टि होता है. तो इसलिए तीनों का ही जरूरत है. और एक विचार जो है, पुस्तकें पढ़ना भी श्रवणम है. जैसे भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं तो किसको हम सुनते हैं? कृष्ण को सुन रहे हैं. प्रभुपाद के तात्पर्य जो जब पढ़ते हैं कौन किसको सुनते हैं? प्रभुपाद को सुनते हैं. तो वैसे रीडिंग भी श्रवणम है. तो जप श्रवणम कीर्तनम और रीडिंग भी श्रवणम कीर्तनम. और आपका दूसरे प्रश्न क्या है?
दूसरा प्रश्न महाराज जी है कि हम जो खाना चाहते हैं वो पकाते हैं और भगवान को ऑफर करते हैं भोग लगाते हैं. तो हमने भोग वो लगाया जो हम खाना चाहते हैं. हमें कैसा पता लगे कि कृष्ण क्या खाना चाहते हैं?
वेरी गुड, वेरी सिंसियर क्वेश्चन. देखिए प्राथमिक स्तर में हम जो खाना चाहते हैं उसके अनुसार हम पकाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं. लेकिन एडवांस स्टेज में हमारा विचार होगा भगवान क्या खाना चाहते हैं, है ना? तो वैसे स्टेज का विचार हम कौन स्टेज में है. अगर हम प्राइमरी स्टेज में हैं तो ठीक है, अपने अपने लालच के अनुसार पकाओ. और एडवांस स्टेज में भगवान के रुचि के अनुसार पकाओ. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण महाराज
जी. यस
महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम सुनते हैं रेगुलर और समझ में भी आ रहा है कि हाँ कौन सा सही है गलत, बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन तो कोई ना कोई पे हम फिर उससे हट जाते हैं या नहीं कर पाते. ऐसा क्यों होता है और ऐसा होते तो हम क्या करना चाहिए?
इसलिए साधु संघ का प्रयोजन होता है. हम जब अकेला रहते हैं तो अपने विचार के अनुसार काम करते हैं, बल्कि जब हम साधुओं के साथ रहते हैं, विशेष रूप से गुरु जी के निर्देश अनुसार जब हम करते हैं, तब हमको विचार होता है उनके क्या विचार है, उनके अनुसार हम करते हैं. उसका इसलिए साधु संघ बहुत जरूरी है. ओके, हरे कृष्ण. यस
महाराज, जैसे हमें अपने स्पिरिचुअल लाइफ में प्रायोरिटी सेट करनी थी, यू नो, कि भगवान के लिए हियरिंग शांति एंड ये सब, वो कैसे प्रायोरिटी सेट करें?
प्रायोरिटी कैसे सेट करें? देखो पहला प्रायोरिटी है 16 राउंड्स, द नेक्स्ट प्रायोरिटी इज फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, द नेक्स्ट प्रायोरिटी इज अटेंडिंग द इंस्ट्रक्शंस. Like for example, those devotees who are staying in a temple, they have to attend the program of the temple. If you are staying at home, then you can consider what your spiritual master told you to do. So this is how the priority would be. The first priority is 16 rounds following the four regulative principles. And then as you read Srila Prabhupada's books, you get more and more directions.
Which part of it process is one is devotional service. Sometimes some services comes, we do enthusiastically, but sometimes we don't like some service or we have some other maybe work and usme, and if we get those service we get disturbed. How to come out of this situation?
Good question. Yeah, I can understand. Like say for example, when you're living outside, maintaining your family, you have to run your business, earn your living. ऐसे जब गृहस्थ आश्रम में जब रहते हो तो बहुत सारे जिम्मेदारी रहता है, तो उसको संभालना है. तो उसको संभालते हुए पूर्ण रूप से भगवत चिंतन शायद नहीं हो सकता. लेकिन हमको कोशिश करना चाहिए जितनी संभव कृष्ण भावना लेकर करना, कि जो कुछ हम करते हैं, जैसे भगवान कहते हैं जत करोसि, जो कुछ तुम करते हो सोचो कि ये भगवान के लिए कर रहे हो, तो तब क्या होगा? यद्यपि डायरेक्ट रिमेम्बरेंस हो नहीं सकता है, यद्यपि कोई अदर डाइवर्शन ऐसा आ सकता है, लेकिन अंतिम फल जो है वो भगवान को जब तत्पुरुष मदर बना, अल्टीमेट रिजल्ट यू ऑफ टू कृष्ण. सो दैट इज हाउ यू नो अल्टीमेटली इट्स अ प्रैक्टिसिंग स्टेज. साधना भक्त, हम साधन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हम परफेक्ट बन सके. शुरू से ही हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हम परफेक्ट बनने का कोशिश कर रहे हैं. तो ऐसे करते करते ये होगा परफेक्शन.
जैसे जैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, परफेक्शन कहीं नहीं आ रहा, सब जगह कंप्लेंट्स है, सर्विस
ये भक्ति का ये
नहीं है, ऑफिस में टाइम नहीं दे पाते.
दिस इज द अनयूजुअल नेचर ऑफ भक्ति. यू नो द अनयूजुअल नेचर ऑफ भक्ति इज दैट व्हेन यू आर एडवांस, व्हेन यू एडवांस देन यू रियलाइज दैट यू हाउ एडवांस, हाउ मच इज देयर टू एडवांस, राइट, हाउ मच इज देयर टू गो. लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डिवोटीज, द Prakrita Bhakta, you can say the third class devotee, is he who thinks that he is the greatest devotee. Krishna is the supreme personality of Godhead and he is the only devotee in this world. That's Kanishtha Adhikari. And what is the Uttama Adhikari? He thinks that everybody else has become a devotee, only he could become a devotee. So the it moves in the reverse order. And the reason is, the more you get to know the Absolute, the more you realize how impossible it is to reach the Absolute. Okay? Yes?
Maharaj, we just were talked about setting priorities, and you said that first of all, it should be 16 priorities. And second, you said that we should follow regulative principles. And third, you said that an instruction from the spiritual master. While I'm following first two steps, but I'm very scared taking instructions from the spiritual master, because I feel that what if I may not be able to do that?
Well, that's a hurdle you have to cross. Right. The thing is, you see, the process of Krishna consciousness is a process of surrender. Surrendering to Krishna. Our material condition is due to our rejection of Krishna. Therefore, the need is to surrender to Krishna. Now, you show your surrender to Krishna by surrendering to Krishna's representative. Right? And that fear that is there, that what if I cannot? The thing is, when you recognize that the person that you are surrendering to is your ever-well-wisher, all he is concerned about is your own benefit. When you realize that, then following the instructions is not going to be difficult. Right? That's why I said, I mean, it's a challenge. And then the question comes that one should not consider a spiritual master to be an ordinary person. That he is going to instruct me for his own purpose, for his own benefit. No. Whatever instruction he's giving is for my own benefit. For my benefit. And one thing I can tell you in ISKCON, the ultimate, the original spiritual master is Śrīla Prabhupāda. And you can rest assured that he'll never go wrong. And he'll never direct you in a wrong way. And whoever is directing you, his instructions are actually none other than, non-different from Prabhupada's instructions. That is what makes a guru. A guru makes him qualified. That he is transmitting his spiritual master's instructions. He is transmitting the instructions of our entire disciplic succession. Ultimately, what he is instructing? The instruction that Krishna gave. Isn't it? The instruction of Bhagavad Gita. That he is actually repeating. He is not concocting something out of his own mind. Alright? But at the same time, you should check out that the person that you are surrendering to, you have full faith in him. Until that time, there is no need to accept the scripture. Only when you are confident that this person is your ever well wisher, then only you surrender. Okay.
So basically, I wanted to check, you know, sometimes you feel that you are, we want to feel that you are progressing in your spiritual journey, but there are times when you feel that you're not able to do what you should be doing in a proper manner. For example, despite doing your 16 rounds, and being connected with the devotees and going for yatras and other things, that aggression, anger, ego, and why these things are not going? Why do you still get it? So then it makes you
okay.
Think that
at least good you're thinking about it, isn't it? Previously you never thought that your anger is not good, right? You shouldn't get angry. But now at least you are thinking that it's not good that you are getting angry. And as far as chanting 16 rounds, mind you, 16 rounds is the beginning. It's a starting point. The end point is 24 hours a day.
There are days when I miss that also because I work. So there are days when I miss that. So then start feeling guilty about it.
Make the best out of a bad bargain. Try to make the best out of it. I know the situation is difficult, especially as I was telling Amin. Like when you are in the outside world, maintaining a family, maintaining a household, you're working. It's not, as conducive as being in a temple as a full-time devotee. So, since you're in that situation, as I say, try to best out of the bad part. Okay. Any other question?
What is the deep meaning of surrendering everything to Krishna?
Surrendering?
Everything to Krishna in practical life.
Surrendering everything to Krishna.
Mind, consciousness,
Yeah. Good. Very good. Bhaktivinoda Thakur is explaining that point. What it actually means. He is saying, Manasa Deho Geho Jokichumor Orpilu Juapode Nanjakishumor. Manasa means mind, Deha body, Geha my home and hearth, my possession, Jokichumor, whatever belongs to me. I'm offering to you. So that's the meaning of surrendering everything. But the thing is, the nice thing about that is that while you're surrendering, then you have the confidence that he is going to take care of you in all respects. You're offering everything to him, but he's going to take care of you in all respects. So you don't have to worry about it. Like this is a condition Krishna made you. You know what is Krishna's condition? You give everything that you have, then I'll give you everything that I have. Now, isn't that a wonderful, isn't that a wonderful deal? Yeah, and that's the problem with the mind. It's difficult, you know, it's difficult because we don't have full faith in Krishna. Today, if, say, a very wealthy person comes and tells you, you give me 1 rupee, I'll give you 1 crore. Will you do it? No? No, you'll do it. But the thing is, again, the faith. Yeah. If a Tom, Dick and Harry comes and tells you, give me 1 rupee, I'll give you 1 crore, you'll say, come on, get But if somebody whom you know, say today, if someone, you know, who you know who is very wealthy, and if he comes and tells you in front of others, say if Bela comes and tells you, give me 1 rupee, I'll give you 1 crore, will you doubt his statement? And what will you do? Why 1 rupee? Take two. So similarly, we have to have faith in Krishna. Krishna is not just saying just for the sake of saying. There is no need for him to mislead us with false statements. When he says, Ahantvam Sarvapapekhyo Mokshesham, he means it. Okay, any other question?
Maharaj, when you say, when Mahaprabhu said Charitakho, Charitakho Krishna Pradesh, so how do we preach initially, like, you know, to friends and relatives who are like quite far away from, you know, who don't even want to listen also? And you know, sometimes I do give Mahaprabhu.
You can tell that to those who will accept it. This. You don't go to a dog and say, Jare dekho tare. Because you know that he doesn't have the ability to understand and act according to that. Therefore, you have to select a person, you know, who is going to understand you. At least, you know, those who are with whom it's possible that they'll understand you. At least tell them.
Not a question, just a request. In 18th chapter, one of the shlokas in Bhagavad Gita, Prabhupada raises one question and then answers it. Prabhupada says that some people may come forward and ask that to Arjun, Krishna was available in person form and he has the benefit of that personal instruction. But for us today, this book is that Krishna himself, and we can benefit it same as it was available to Arjuna, Ms. Krishna in the personal form. So my request to you, if you feel that it's, so we are like person, we have that, I don't know how to say it, just any chance you would like to share that you got that direct instruction means from the Gita itself, just as if we are in the...
Well, Prabhupada's Bhagavad Gita, Bhagavad Gita as it is. Because it's as it is. You accept it, you'll get the right benefit. The benefit that Krishna intended while he's giving to Arjuna. So take it with that understanding. Prabhupada made it clear, and you will see when you read Prabhupada's books. Prabhupada's books is Bhagavad Gita, is a clear explanation through his purports how Arjuna understood it. And accordingly, how we are meant to understand. And that's where the result you can see. What kind of response Bhagavad Gita as it is getting all over the world, how many people are benefiting. You know, in 1976, we took a survey. How many Bhagavad Gitas we could find in English. There are about 250 translations of Bhagavad Gita in English. But notice, all these books together didn't make a single devotee of Krishna. 250 translations of Bhagavad Gita didn't make a single devotee of Krishna. Whereas Prabhupada's one Bhagavad Gita as it is made hundreds of thousands of devotees all over the world. And now it's millions of devotees all over the world. That's the potency of your Prabhupada's presentation. Because it's as it is. The way Krishna spoke, the way Arjuna understood. And that was transmitted by Śrīla Prabhupāda. Okay.
So Guru Maharaj, this we believe and that's why we are here, but when sometimes we are preaching to some difficult people, they say that these books are written for brainwash. How do you know these books are what Krishna said? These are written later on.
Don't waste your time with me. Tarko apratishtha shrutaya bibhinna. Argument, you won't be able to understand Krishna. So therefore it is said, what is the ninth offense? There's no need to waste your time with the faithless people. Rather, give it to them who are going to accept it with the right spirit.
Hare Krishna.
Yes.
How we can improve the quality of chanting, as chanting is one of the most important and the first priority. I'm doing 16 rounds, but still, I feel that I'm lacking. You see, after doing 3 or 4 rounds, mind keeps on bending here and there, different thoughts, then I just push my mind back here. No, come here. So, what's the proper way? How we can improve?
At least with you, it's after 3-4 rounds. It's after 1 round. Mind's business is that. Therefore, the mind should be on hearing. Because the sound vibration, right? The sound is received through hearing. So, shravanam. When you are chanting, just hear. Put your mind in your ears. Just hear. Make it a point. And if you feel that the mind has drifted, bring it back to your hearing. Okay? And that is the way to chant. Okay? Mind will drift. But when you say that it's drifted, bring it back. But where do you bring it back? That's the question. Bring it back to your hearing. Okay? Okay, yes?
One question. When we think about the ultimate goal, like we need to get attached to Krishna. So when we think only about that, the attachment becomes easy for us. But like it seems easy for us. Like we can get attached to Krishna ji and Radha ji. But when we think that to get attached to Krishna, we need to do this, we need to do that. So there are steps that we need to follow so that we can progress step by step. So how to handle these two situations? Like on second case, it seems a bit difficult to progress. So how to handle?
No, what is it? I couldn't get your question.
So like when we think about Krishna, like we need to attach to Krishna, or he's the only person we need to think about, not the person, like we need to think about Krishna only, then it becomes easy, like we don't see any obstacle, we just need to remember Krishna every time. But when we think that to progress, to get attached to Krishna permanently, we need to go step by step. then it seems difficult.
So. Then forget the steps, just be fine. Jena tena prakarena mana krishna niveshayat. Jena tena prakarena, by hook or by crook, fix your mind on Krishna. So if other things are distracting your mind from Krishna, then don't worry. But, you know, at the same time, you have to do your sadhana bhakti. Sadhana bhakti has to be practiced. So, practice your sadhana bhakti, at the same time, try to maintain your attachment to Krishna. Okay? So you can have a little... Yeah, okay? Any other question? Yes.
Then again, how to make balance between the spiritual life, family life, and the business life? With again the question which Amit Prabhupada
asked. Turn your family into Krishna's family, and make your business into Krishna's business. Give the profit to Krishna.
Maharaj, we are constructing a temple here.
Yeah, tat kurusha madarpana. You see, people use the word that karma nevadhi karasteshu mahaleshu kalachana. They put the emphasis on karma ne bhadhikariste, but when it comes to ma phaleshu kadachana, what does it actually mean, ma phaleshu kadachana? Because the phal, the result of your action, should be offered to Krishna. Doesn't matter if you, anyway, like, again, I will explain that or clarify that. That, say, you are running your business to maintain your family, maintain your household. Now, if you recognize that your family is Krishna's family, your house is Krishna's house, then whatever you're doing, the business that you're running to earn money, is to maintain Krishna's family and Krishna's household. So this is how you are turning it into Krishna conscious way. Right? So this is how, you know, like Krishna consciousness. It is saying, sthanishthitva shrutigatan tanubhang manopi. Wherever one is situated, wherever you are situated, being situated there with your body, mind and words, according to the instructions of the Veda. Act. So, do whatever you're doing, but try to bring Krishna in it, in the center of it. Yes, you are earning money. I mean, when I say that offer the results to Krishna, that means offer the results in a Krishna conscious way. It is not that, you know, like you have to come, I mean, all the profit you are making, you have to just give it to Krishna. Then the thing is, it won't be practical. You have the responsibility to maintain your family. Therefore, the way to do it is recognize that your family, after all, is it your family? Is your wife your... Isn't the ultimate consideration is that, no, she is Krishna's, isn't it? Your children, are they your children? No, they're Krishna's children. So it's a transformation of consciousness. Right? You're bringing in Krishna and seeing in the right perspective. Then, again, where they're living, is that your house? No, it's Krishna's house. So this is how you can maintain your family, maintain your household in a Krishna conscious way.
से भगवान भगवद गीता में कहे हैं कि राग द्वेष के बारे में भगवान कहते हैं कि परिपंथी है श्लोक याद है राग द्वेष परिपंथी ना ऐसा करके बोलते हैं राग द्वेष परिपंथी ना
ओके
तो मतलब ये बहुत स्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति या कोई परिस्थिति जब हमारे अनुकूल होती है तो हमारा राग हो जाता है उसमें और कोई व्यक्ति या परिस्थिति हमारे प्रतिकूल है तो उसमें द्वेष हो जाता है और इससे हम कैसे बच सकते हैं
ये अटैचमेंट एंड डिटैचमेंट यू नो aversion if it is centered around our sense gratification then that is not desirable when it is with Krishna consciousness that is what like this therefore the consideration is that we have to get rid of them this material nature is a duality place of duality Ichha Dvesha Danda Mohina Bharata. So the attachment and aversion. But we have to transcend that. And the way to transcend that is by bringing Krishna in the center. And initially we have to get rid of them. That Kaam, Krodh, Lobh, Moha, Mad, Matsarya have to be rejected. Because they are detrimental to Krishna consciousness. But then comes spiritual attachment. Kaam Krishna Karmarpani. Lust is engaged in serving Krishna. Dvesh Bhakta Dveshi Jani. Aversion to those who are averse to Krishna. So in this way, all these gets positive feature, positive aspect, being engaged in Krishna consciousness. So that is the way to initially try to get rid of them. But how to get rid of them? By developing attachment to Krishna. Okay. So, last question.
या जो बाद में यदि मान लो करते हैं तो लेकिन इसको भूला कैसे जा सकते कैसे भूल सकते हैं
ऐसे
क्योंकि इस लाइफ में जो हो रहा है वो तो मैं याद रहता है कि इस लाइफ में टू रेवोल्यूशन ब्रेक किया है ये मैंने वो किया तो इसको हम भूल कैसे सकते क्योंकि भक्ति जब करते हैं करेंगे उसको भूल के आगे ट्राई करते हैं लेकिन बाद में फिर वो ध्यान में आता है तो उसको फिर कैसे दूर कर सकते हैं क्योंकि इस लाइफ में मेमोरी में रहता हूँ जैसे इस लाइफ टाइम में हमने तो कुछ गलत किया है जैसे कुछ भी रूल ब्रेक किया ये है तो मेमोरी में चला जाता है भाई तो उसको कैसे भूल सकते हैं जैसे कि आगे हम इंप्रूव कर पाए क्योंकि वो याद रहता जब
भूलने की जरूरत नहीं है कृष्ण के पास अपने आप को समर्पण कीजिए तब वो जो कुछ पुराना जो कुछ था हुआ था वो सारे डिसमिस हो जाएगा अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि कृष्ण वचन दे रहे हैं सारे पापों से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा गलत काम जो है वो असल में पाप है लेकिन हमको ये विश्वास रखना चाहिए कि अगर हम कृष्ण के पास अपने आप को समर्पण करते हैं तो कृष्ण हमारे सारे पूर्व का जितने सारे बुरा काम था वो सारे खत्म ठीक है
Maharaj, yes, Krishna is saying that I am the reason of all reason. So, like, if we are preaching anyone, you know, it is pre-already planned by Krishna. It is not our effort.
So like, who said that?
Because Krishna is saying that I am the reason for
all. I am the cause of all causes, not I am the reason.
I
am the cause of all causes. Every action, there is a cause behind it. So the ultimate cause of all causes is Krishna. Say for example, this material nature is a manifestation of Maya. Who is the cause of Maya? Krishna. Due to Mahavishnu's glands on Maya, who is the cause of Mahavishnu? Krishna. So this is ultimately he is the cause of all causes. Okay, any other question? Then you can have a little kirtan. Oh, you have a question.
I am staying in this building only on the top floor. Many times Amitji called me for the classes and sometimes I used to come, one or two times. There are so many classes in front of me, but I am not getting the time. So what I learned from my father that karma is puja. But if I am doing my karma, that I am not getting the time to do the pujas. So what I want to know that who is powerful in the world, in the universe?
Who is powerful means?
Means if I say karm hi puja hai, theek hai, aur vakt bada balwan hota hai.
Isne guru ka zarurat hota hai, jo samjhaye.
Aaj mujhe vakt mila, theek hai, aaj mujhe ho sakta hai kahin se koi, matlab inka dedication mera inspiration hua ki theek hai, main aaun. I joined this. But I am staying in this building, so many times I have seen the classes are going on. But means I didn't got the time due to my some busy schedule or something. So sometimes I feel guilty.
Even if there is no program, but if you have time, speak to Amit.
I used to speak.
Even if there is no program. And listen to what he says.
But whenever we speak, that time we are talking about the business as well.
So now you make Krishna Katha your real business. Hearing about Krishna and speaking about Krishna. Or ye jo keh rahe hain karam. Karam to har vyakti kar raha hai. तो वो कर्म के पूजा हो रहा है. एक डाकू डकैती कर रहा है, वो भी कर्म. कोई की बोलेगा कि डाकू का जो डकैती है वो पूजा है? नहीं. कर्म जो भगवान के लिए होता है वो पूजा होता है.
वाल्मीकि जी भी डाकू थे.
डाकू पहले डाकू थे, बाद में क्या हुआ?
कर्म किया उन्होंने डाकू वाला.
कर्म नहीं, नारद मुनि का कृपा. इसलिए मैं बोला गुरु का जरूरत. जब तक नारद मुनि के साथ उनका संयोग नहीं हुआ था वो डाकू था, बल्कि नारद मुनि के संयोग में आने के बाद भगत बन गए. ठीक है, तो कम से कम अमित को अपने गुरु बनाएंगे. आई एम सीरियस. Whoever gives you in a knowledge about Krishna is
there. I
have already
I have already set up the mindset. My colleagues, my juniors, all my plant people are looking at me. Sir, ko kya ho gaya? So, maine kuch nahi bola kisi ko. I just punched it and went by and I aa gaya. So that happens something whenever you want to do something.
तो क्या लगता है वो जो जल्दी जल्दी जो आए हैं वो टाइम का सदुपयोग हुआ था?
तो मुझे वही लगता है कि वक्त जो होता है वही सबसे पावरफुल है, वही आपसे सब कुछ करवाएगा.
Thank you. Hare Krishna. So, we can have a little kirtan. Give me the harmonica. Speak to him. He's coming to Bhubaneswar tomorrow. Thank you very much.